प्रेम के साम्राज्य में प्रेमास्पद के मन की बात पूरी हो, ये धुन रहती है। प्रेमी यही चाहते रहते हैं कि जिसमें प्रेमास्पद को सुख मिले, प्रेमास्पद के मन की बात पूरी हो। तो महाराज गोपियां दिन रात श्री कृष्ण के विरह में इतनी व्याकुल हैं, इतनी बेचैन हैं। अगर उनके वायु का स्पर्श हो जाए, शीतल वायु का, तो चौंक कर कहती हैं, क्या तू प्यारे श्याम सुंदर का स्पर्श करके आई है? अगर कोई मथुरा मांग जाते हुए मिल जाए तो भैया तू कहाँ जा रहे हो, मथुरा जा रहे हो? अरे ये कहना उनसे, ये कहना, ये कहना। अगर कोई मथुरा मांग जाते हुए मिल जाए तो भैया तू कहाँ जा रहे हो, मथुरा जा रहे हो? अरे ये कहना उनसे, ये कहना, ये कहना। आता हुआ मिल जाए तो मालूम है हमारे श्याम प्यारे श्याम सुंदर कैसे है? अब उनको न दिन का पता, न रात का पता। और महाराज गऊओं की क्या दशा हो गई, तृण मुंह में लगा हुआ है, न उगल पाती है न निगल पाती है। क्यों? गऊओं ने भी श्री कृष्ण को बछड़ा बनाकर उनके स्पर्श का सुख लिया है, गोपियों ने भी श्री कृष्ण की समीपता का रस लिया है। अब जिस जिसने रस लिया है वे सब बेमन के हो गए, बेमन के हो गए। कभी कभी गोपियों की दृष्टि पड़ जाए कि उन्हें हरा हरा जब बल दिखाई दे तो अधीर हो जाए, व्याकुल हो जाए। मधुबन तुम क्यों हरे हो, क्यों नहीं जल गए? मुकुंद बिना फूल व्यर्थ ही खिलते हो, जमुना व्यर्थ ही बहती हो। कहने का मेरा तात्पर्य था कि जो ब्रज एक रस का स्रोत दिखाई देता था, अब कन्हैया के बिना सब घोर अग्नि में जलता हुआ दिखाई देता है। और उधर क्या दशा है? इधर तो ये दशा, उधर क्या दशा है? वे श्री कृष्ण मथुराधीश होकर बड़ा जय जयकार है, एक दिन अधीर हो गए। भैया उद्धव मोहित तो ब्रज की बड़ी सुदया, क्यों महाराज यहाँ आपकी सेवा में क्या कठिनाई है, क्या कष्ट है जो आपकी ब्रज की सुदया है? भैया क्या बताऊं, जब तक मैंने छोड़ा है किसी ने कन्हुआ कहकर नहीं बुलाया, किसी ने गुंजा की माला नहीं पहनाई, किसी ने दूध के झाग नहीं दिए, किसी ने माखन चोर नहीं कहा, किसी ने चित्त चोर नहीं कहा। भैया उद्धव मोए ब्रज की बड़ी सुधिया है। महाराज आप अधीर न हो, व्याकुल न हो। और भैया उद्धव तू तो ब्रह्मवित पुरुष है ना, मेरा नित परम सखा है ना, मैंने सुना है कि ब्रजवासी मेरे वियोग से बड़े अधीर है, व्याकुल है। जा भैया, उन्होंने समझाया। उन्होंने कहा सरकार आप अधीर न हो, आप व्याकुल न हो, मैं जाऊंगा। अरे भैया तू कैसे जाएगा, कौन तेरी ओर देखेगा वहां? तो भगवान ने स्वरूप अपना ही स्वरूप दिया, अपना ही रथ दिया, अपना ही पत्र दिया, तब वो उसी रथ में बैठकर दस। तो सुनते तो ये है कि जैसा जैसा ब्रज समीप आता जाता है वैसे वैसे प्रेम के प्रभाव से उद्धव जी विभोर होते चले जाते हैं। अब देखिए सबसे पहले दृष्टि उद्धव जी के रथ पर किसकी पड़ी? सखाओं की पड़ी। ये भाव का भेद होने से ना, जो प्रीत की न्यूनता और अधिकता होने से चेत किसको ज्यादा रहता है, बुद्धिमान कौन ज्यादा रहता है? तो सखाओं ने देखा, एक दूसरे कहा अरे भैयाओं देखो ये तो अब ऐसा ही रखा है रहे जैसे रथ में हमारा दादा गया था। मालूम होता है कि हमारा दादा आ रहा है, और तो उनके हर्ष का पारा पार नहीं। और जितना प्रेम बढ़ता है, हर्ष बढ़ता है, उतनी शारीरिक चेष्टा रुकती है। अब जो के तो खड़े रह गए, रथ जैसा जैसा समीप आता है वैसे वैसे और तीव्र उत्साह बढ़ता चला जाता है। और आने पर देखा तो उसमें उद्धव जी विराज रहे हैं। सखाओं ने कहा उद्धव जी विहार आप अच्छे तो हैं, बोले हमारा दादा अच्छा है कि नहीं? उद्धव जी कभी उसे हमारी भी याद आती है कि नहीं? उद्धव जी ने कहा आप अधीर न हो, आपके दादा बहुत अच्छे हैं, उन्होंने भेजा है मुझे कि मैं आपसे उनकी बात कहूँ, आप अधीर न हो। अरे भैया उद्धव क्या बात करेगा तू, हम क्या बात सुनेंगे, वो दिन कहा
राधा के साथ खेलते थे, खाते थे, वो हमारे साथ खाता था। भैया अब हमें तो कितना अच्छा लगे, तू जी बता, हमारे दादा अच्छे तो हैं, कब आएंगे? चल भैया हम अपनी दशा क्या बताएं, तू इन गैयन की दशा देख ले, ये तुमको निकलती भी नहीं है, उगलती भी नहीं है, जो की चोट चकटकी लगाए देख रही है, स्तब्ध हो गई है। भैया तू चल देख मैया की क्या दशा है, बाबा की क्या दशा है। इस समय उद्धव जी मैया यशोदा के पास, नंद जी मिले हैं पहले, तो नंद जी के पास जब आए तो उन्होंने यही कहा, मैया उद्धव हमारा लाला अच्छा तो है, हमारा लाला अच्छा तो है। मैया उद्धव हम क्या बताएं, लाला तो हमें भूल गए, लाला को तो हमारी सुनी नहीं है, पर तू ये बता अच्छे तो है वो। भैया बता कब आएगा लाला? बोले बाबा आप अधीन न हो, आपके लाला जरूर आएंगे, आपके लाला ने आपको जोहार कहा है, आपके लाला ने कहा है कि बाबा इतना कठोर रह गए, जब से छोड़ के गए तब से आओ ही नहीं। उल्टा उड़ाना, उल्टा चोर कुतवाले जाते। मैया के पास गए, मैया ने कहा मैया उधर देख ये लाला का दूध के झाग रखे हैं, ये लाला के खिलौना रखे हैं, ये माखन रखा हुआ है, ये मिट्टी रखा हुआ है, हमारा लाला अच्छा तो है। भैया उद्धव जहाँ रहे सुखी रहे, जुग जुग जिए। भैया उद्धव मैं क्या बताऊँ, एक बार लाला आ जाता वो अपनी धाय बना लेता, मैया न कहता आ तो जाता। और भैया उद्धव मुझसे बड़ा अपराध हुआ, हाय हाय मैंने लाला के हाथ बांध दिए, मैंने लाला को अपनी भूल का अनुभव कर रही है, विरत हो रही है, बार बार आशीर्वाद दे रही है। भैया उद्धव मैं तो माँ हूँ, सब सह लूंगी, चुपके चुपके ही रो लूंगी, पर प्रेम भी देखना, राधा को समझा जाए एक बार तो आ जाए। भैया देख गोपियों क्या दशा है, जब लाला था तो दो जाती चार आती, दिन भर मेरा घर भरा रहता था, जब से लाला गया है कोई न ग्वाल वाला आवे, कोई गोपी आवे, कुछ नहीं, सब नीरस हो गया है। तू जा इन गोपियों को तो देख उनकी क्या दशा हो गई। तो महाराज उद्धव जी गोपियों के पास आए हैं तो उन्होंने यही कहा, बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन सार ये कहा, उद्धव तुम बोरे हो गए हो, तुम पागल हो गए हो, तो जो यहाँ तक दौड़े हुए चले आए, तुम बताओ कहाँ से आम नहीं है। हर गोपी में रोम रोम में श्री कृष्ण का दर्शन हो रहा है उद्धव जी को, रोम रोम से आम है। और भैया उद्धव तुम योग सिखाए भी आए हो, तुम ये तो बताओ हमारे पास हमारा मन है क्या, जो मन के निरोध हम किसका करें, किसका करें, हम कैसे योग करें भैया? और अगर उन्हें हमें अवधूत नहीं बनाना है, योगिनी बनाना है, तो गुरु बहन चेली है ना, ये कैसे हो सकता है? तो महाराज उद्धव जी सारा ज्ञान भूल गए और प्रभु से आराधना करने लगे, और इधर से जब वो लौटे हैं तब उधर से तो श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए आए थे, बुद्धिमानी का अभिमान लेकर आए थे, इधर से श्री कृष्ण की निंदा करते हुए लौटे हैं, और जब लौटे हैं तो इतना उनको, और ये मनोरथ करते हुए लौटे हैं कि जा ब्रज में मैं लता हो जाऊं, पता हो जाऊं, गोपी पद पंकज की रज मेरे ऊपर पड़ जाए, मैं कृतार्थ हो जाऊं। और उधर जाकर जब श्री कृष्ण को बिगड़ने लगे हैं, जल्दी जाओ इन सारा ब्रज डूब जाएगा, तो श्री कृष्ण के रोम रोम में गोपियों का दर्शन हुआ। तो प्रेम का जो अद्वैत है वो विचित्र अद्वैत है महाराज, यहीं तक थोड़ी समाप्त हो गया, आगे चल के श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर चले गए, अब रुक्मिणी जी के पास चले गए, द्वारकापुरी चले गए, बड़ी मौज हो रही है, पटरानियां 800 पटरानी है, कहीं 16 से आते, कितनी रानियां हैं, महाराज अधिराजा हैं, जय जयकार हो रहा है। तो नारद जी को विनोद सूझा और उन्होंने विनोद में श्री रुक्मिणी जी से कहा कि हे रुक्मिणी जी, आप जगन्नाथ प्राण बल्लभ की इतनी सेवा करती हो, प्रेम करती हो, पर जब देखो तब ये राधे राधे रखते रहते हैं। तो यहाँ स्त्री स्वभाव का थोड़ा चित्रण है, या अधिकार मानने वाले प्रेमियों का और अधिकार न मानने वाले प्रेमियों का चित्रण है कि मत सोचिए रुक्मिणी जी प्रेमी नहीं है, परम प्रेमी है, राग प्रेम है, प्रेम में कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रेम में श्रेणियां न होती है। तो रुक्मिणी जी तो अपना अधिकार मानती है, तो ये बात रुक्मिणी जी को पसंद नहीं आई, क्यों? किसी का पति किसी स्त्री की प्रशंसा करे या किसी स्त्री को पसंद करे तो स्त्री को सही नहीं जाती, ऐसे पुरुषों से भी नहीं सही जाती। अगर किसी की स्त्री किसी पर पुरुष को प्रेम करे या पसंद करे तो पुरुष को भी अपना बड़ा तिरस्कार मालूम होता है और स्त्री को भी अपना बड़ा तिरस्कार मालूम होता है। क्यों? दोनों एक दूसरे पर अधिकार न मानते हैं। तो रुक्मिणी जी थोड़ी उदास हो गई। आप जानते हैं जो श्याम सुंदर प्रेम के ही पुजारी हैं, अगर उनकी प्रिया उदास हो जाए तो श्री कृष्ण को कहां रख, श्री कृष्ण के सिर में पीड़ा हो गई। रुक्मिणी की उदासी से श्री कृष्ण के सिर में पीड़ा है। वे कितने प्रेमी हैं, उन्हें प्रेमी कितने प्यारे लगते हैं, वे प्राणी मात्र के कितने अपने हैं, इसकी कल्पना नहीं कोई कर सकता। महाराज सूफियों ने तो खुल्लम खुल्ला कह दिया, इसका बल दर्दले मासूक पैदा नहीं सबक। प्रेम जो है पहले मासूक में पैदा होता है, प्रभु में पहले प्रेम जगता है, सब कोई प्रेमी होता है, सूफियों ने खुल्लम खुल्ला कह दिया। तो श्री कृष्ण ने जब देखा कि रुक्मिणी जी का चित्त उदास हो गया, उनसे ये सहा नहीं गई, कितनी प्यारी है रुक्मिणी जी श्री कृष्ण को, सोचिए। श्री कृष्ण ने कहा आप चिंता न करें, कोई बात नहीं रुक्मिणी जी, कोई चिंता की बात नहीं है। फिर नहीं महाराज, ये तो बताने पड़ेगा, आपको चित्त प्रसन्न नहीं ना है। उन्होंने कहा बताया रुक्मिणी जी, आज हमारे सिर में पीड़ा है, तो पीड़ा है कि तुम्हारे कहा उपचार करें। उपचार की बात जो श्याम सुंदर ने सुनी महाराज, अत्यंत अधीन हो गए और बड़े आह लेकर कहा, रुक्मिणी जी जा द्वारकापुरी में उपचार कहा। अब तो रुक्मिणी जी बड़ी बिगड़ी, बोले महाराज आप कैसी बात करते हैं, जिस द्वारकापुरी में अष्ट सिद्धि नवनिधि बात करती है वहाँ उपचार ना है सके। कृपानाथ बताएं तो सही क्या उपचार है। फिर अधीर हो गए श्री कृष्ण, बोले रुक्मिणी जी क्या बताए, औषधि नहीं मिलेगी यहाँ। बोले महाराज आप बताते तो है नहीं और कहते औषधि नहीं मिलेगी। तो बोले रुक्मिणी जी अब देखिए श्री कृष्ण को प्रेमी कितने प्यारे, प्रेम कितना प्यारा है। रुक्मिणी जी यदि कोई हमारा प्रेमी होता, हमारा प्रेमी होता और अपने चरण की रज लगाए देता तो पीड़ा बंद हो जाती। और रुक्मिणी सोचने लगी प्रेमी तो हम हैं, देखिए जैसे ये भास होता है हम प्रेमी हैं, वहाँ प्रेम की बड़ी कमी है। प्रेमी तो हम हैं, चरण भी हैं, रज भी है, पर ये हमारे पति हैं, हम इनकी पत्नी हैं। अगर हम पति के मस्तिष्क पर चरण की रज लगाएंगे तो नरक भोगना पड़ेगा। हमारा रुक्मिणी का साहस नहीं हुआ। अब साहस नहीं हुआ ये बात अलग है, पर प्यारे की पीड़ा भी तो नहीं सही जाती। तो रुक्मिणी जी अत्यंत अधीर हैं, व्याकुल हैं, बेचैन हैं, कभी भीतर जाती हैं, कभी बाहर जाती हैं, कल नहीं पड़ती, क्योंकि न तो चरण की रज लगाने को साहस हो, क्योंकि अपने को जो नरक भोगना पड़ेगा, और न प्यारे की पीड़ा सही जाए। अब तो रुक्मिणी जी अत्यंत अधीर हैं, व्याकुल हैं। इतने में देखते हैं कि ब्रह्म ऋषि श्री नारद जी आए हैं। जब देखा श्री नारद जी आ रहे हैं और नारद जी ने देखा रुक्मिणी जी आज बड़ी अधीर मालूम होती है, बड़ी व्याकुल, तो रुक्मिणी ने कहा ब्रह्म ऋषि जी दंडवत पर दंडवत रह गई, पर आज अधीर कैसी हो? बोले अधीर क्या है ब्रह्म ऋषि जी, प्राणनाथ के सिर में बड़ी पीड़ा हो रही। अब नारद जी तो हरिभक्त हैं, जो उन्होंने देखा प्राणनाथ के सिर में पीड़ा है रही है, तो महाराज इतने अधीर हो गए कि दौड़े दौड़े श्री कृष्ण के पास आए। कहले महाराज कहा बात है, आज कैसी पीड़ा है रही है, कोई उपचार नहीं है? कहा ब्रह्म ऋषि दंडवत आओ बैठ जाओ। बोले दंडवत तो है गई महाराज, पर ये बताओ कोई उपचार नहीं है? बोले द्वारकापुरी में उपचार कहाँ? बोले बताओ तो सही, आकर बताते तो अब है ही नहीं। अगर रुक्मिणी जी पहली सारी बात कह देती तो काहे को पूछते, छिपा लिया। तो असली तो यह है महाराज, कोई अपने चरण की लज लगा देता हमारा प्रेमी, हमारी सिर पीड़ बंद हो जाती। हाँ जी सोचने लगे प्रेमी तो हम भी हैं, पर हमारा दास्य भाव है। अगर दास स्वामी के मस्तिष्क में चरण की लगा तो नरक भोगना पड़े, तो महाराज नारद जी का भी साहस नहीं हुआ, साहस नहीं हुआ। अब साहस नहीं हुआ बात अलग, पर वेदना तो है, पीड़ा तो है। तो प्रेमी तो जब कोई कठिनाई आती तो किसके पास जाएगा? प्रेमी के पास जाएगा। अब नारद जी दौड़े दौड़े आए ब्रिज में, क्योंकि उनको तो दूर गमन की सिद्धि पर आते हैं ना, हर जगह उनका प्रवेश है, मन की गति से भी तीव्र गति है नारद जी की। अब दौड़े दौड़े आए,
बल्कि कोई कोई तो कहते हैं नारद जो है वो श्री कृष्ण के मनी है। जब दौड़े दौड़े आए वहां कोई झंडोती ना करे, झंडोती ना करे, क्यों आंखें खुली है पर मन तो है ही नहीं उनके पास, सब भाव समाधि में डूबी हुई है, प्रेम में डूबी हुई है। अब उनको युक्ति सूझी और युक्ति सूझी तो क्या किया कि जोर जोर से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण इस नाम का गान लगे करने। आप जानते हैं जिसके साथ अपने मन का एसोसिएशन होता है ना उसका असर होता है। अब गोपियों के मन में प्यारे श्याम सुंदर के नाम का एसोसिएशन है, उनको थोड़ा चेत भाव, थोड़ा चेत हुआ प्यारे का नाम सुनकर। जब थोड़ा चेत हुआ देखे हरि भक्त श्री नारद जी हैं, सब उन्होंने डंडौत किया, डंडौत बाबा, बाबा कहाँ से आए हो, बाबा कहाँ से आओ, क्योंकि प्यारे के प्यारे प्रेमियों को प्यारे लगते हैं। अब बाबा बाबा बोले ना है तुम्हें, अरे बाबा तेरे हाँ कहाँ से, जल्दी बता कहाँ से आयो है। अब उन्हें कहना पड़ा कि मैं द्वारकापुरी से आयो हूँ। तो जो प्यारे के धाम की बात सुनी और चेत हो गया और बस चारों ओर से एक ही आवाज आ रही, हमारे प्यारे अच्छे तो हैं, हमारे प्यारे अच्छे तो हैं। अभी तो पीड़ा देके आए, कैसे कहे अच्छे एकदम। अब जो नारद बाबा को हिचक हुई बोलने में देर जो हुई, तो गोपियां अत्यंत व्याकुल हो गई, क्योंकि प्रेम में अनिश्चिंतन का बड़ा भय है। बार बार पूछे बाबा तेरे हाथ है तो ठीक बता, हमारे प्यारे अच्छे तो हैं। अब एकदम कह दे सिर में पीड़ा, जाने कितना आघात पड़े, संबंधित गोपियों का प्राण ही छूट जाए। कहे अच्छे तो हैं पर, बोले बाबा कैसी पर, जो उनके सिर में पीड़ा है रही है। अब जो गोपियों ने सुना कि प्यारे श्याम सुंदर के सिर में पीड़ा हो रही है, तब तो इतनी अधीर हो गई, इतनी व्याकुल हो गई, अरे बाबा वहाँ कोई उपचार करने वालों नहीं है, हाय हाय यदि वे ब्रज में होते उनकी मैया उपचार करती, उनके बाबा उपचार करते। अरे बाबा वहाँ द्वारकापुरी में कोई उपचार करने वालों नहीं है, बोले उपचार करने वाले तो हैं, वे स्वयं ही बड़े चतुर्वैद्य है, पर गोपियों औषधि ना मिले। बोले बाबा तेरे हाथ है तो जल्दी बता ऐसी कौन सी औषधि है जो ना मिले। बोले औषधि तो यह है कि ये दिन का कोई प्रेमी होता और अपने चरण की रज लगा देता तो पीड़ा बंद है जाती। बोले बाबा तेरे हाथ है तू चाय इतनी ले जा, जल्दी जा जल्दी जा। अन्य गोपियों तुम पागल हो गई हो, तुम नहीं जानती हो कि श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद घर है, तुम उनके मस्तक पे चरण की रज लगाए के नरक भोगोगी। बोले बाबा हम भली बात जानती हैं, नहीं जानती है सो बात नहीं है, पर तू नहीं जानता है। बोले मैं कहना जानू गोपियों, अरे ब्रह्म ऋषि को कहती है तू नहीं जानता है कि तू ये ना जाने हम एक जन्म नहीं, हम अनेक जन्मों तक नरक की यातना सह सकती हैं, पर पीड़ा प्यारे की पीड़ा नहीं सह सकती। यह है गोपी प्रेम। कहने का मेरा तात्पर्य था कि ये प्रेम कैसे प्राप्त हुआ, ये प्रेम प्राप्त हुआ आत्मीयता से, अपनत्व से। तो जिन्होंने प्रभु को अपना करके स्वीकार किया उनके हृदय में प्रेम की जागृति हुई। अब अपनापन कैसे स्वीकार हो भैया, तो जैसे कुछ नहीं चाहिए वही अपनापन सुरक्षित रख सकता है, जिसके पास अपना करके कुछ नहीं है वही अपनापन सुरक्षित रख सकता है, जिसका अपने पर पूरा अधिकार मानता है और अपना बिल्कुल अधिकार नहीं मानता है वही अपनापन सुरक्षित रख सकता है। तो ये जो परकिया भाव का जो प्रेम है गोपियों में, जो परकिया भाव का प्रेम है वही वास्तव में प्रेम है। इसीलिए मानव सेवा संघ की जो प्रार्थना होती है ना उसमें आगे चल के ये कहा गया कि आपके पवित्र प्रेम की प्राप्ति। पवित्र प्रेम से मतलब क्या, क्या प्रेम कभी अपवित्र होता है? अपवित्र नहीं होता, लेकिन पवित्र प्रेम का विशेषण इसलिए दिया गया कि जिसमें प्रिय को ही रस देने की बात है, अपने सुख की बात नहीं है, अपने जीवन में कोई भय नहीं है, कोई प्रलोभन नहीं है, न मुक्ति चाहिए न भुक्ति चाहिए न दुख निवृत्ति चाहिए, केवल जिससे प्रिय को रस मिले वो ही चाहिए। अब प्रिय को रस कैसे मिलता है? बोले प्रिय को रस तो प्रियता से ही मिलता है, प्रेम से ही मिलता है, क्योंकि प्रेम ही तो एक ऐसा तत्व है, प्रेम ही तो एक ऐसा तत्व है कि जिसको पाकर वो ब्रह्म को भी रस मिलता है और जिसके देने की सामर्थ्य एकमात्र मानव ही में है। क्यों? मानव ही प्रभु को अपना मान सकता है। मानव ही निर्मम निष्काम और असंग हो सकता है, तो जो निर्मम हो सकता है, निष्काम हो सकता है, असंग हो सकता है, वही अचा हो सकता है, वही अप्रयत्न हो सकता है, और वही सेवा परायण हो सकता है, और वही प्रेम प्राप्त कर सकता है। इस दृष्टि से अगर आप विचार करके देखेंगे तो प्रेम की प्राप्ति हर भाई को, हर बहन को, हर परिस्थिति में हो सकती है, लेकिन बिना सत्संग के नहीं हो सकती। और सत्संग का अर्थ क्या है? प्रभु को अपना मानना सत्संग है, अपना करके कुछ न रखना सत्संग है, सभी की सेवा करना सत्संग है। तो चाहे सेवा करो, चाहे अचा हो जाओ, चाहे समर्पित हो जाओ, जो आपको सुलभ पड़े, उसी के द्वारा हम सब उस प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, जो प्रेम सतयुग के प्रेमियों को मिला था, त्रेता के प्रेमियों को मिला था, द्वापर के प्रेमियों को मिला था, और कलयुग के प्रेमियों में जो प्रेम मीरा जी को मिला, जो प्रेम ईसा को मिला, जो प्रेम नबी मोहम्मद को मिला, अनेक भक्तों को, अनेक संतों को जो प्रेम मिला है, हर युग में मिला है, वही प्रेम हर भाई को, हर बहन को मिल सकता है, किंतु बिना सत्संग के नहीं मिल सकता। जैसे द्वापर में गोपियों ने श्री कृष्ण को अपना पति करके स्वीकार किया, कलयुग में मीरा जी ने अपना पति करके स्वीकार किया, जैसे द्वापर में ग्वाल बालों ने उनको अपना सखा करके स्वीकार किया, ऐसे महाराज कलयुग में भी उनको सखा करके स्वीकार किया, उनको वात्सल्य भाव से भी स्वीकार किया, दास भाव से भी स्वीकार किया। ये आपकी अपनी मर्जी है, चाहे उनके दास भाव से संबंध जोड़ो, चाहे वात्सल्य भाव से संबंध जोड़ो, चाहे सख्य भाव से संबंध जोड़ो, चाहे मधुर भाव से संबंध जोड़ो, हर प्रेमी को ये मानना ही पड़ेगा कि मैं उन्हीं की जाति का हूँ, उन्हीं से मेरा नित्य संबंध है, वही मेरे अपने हैं, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पांच बातों के द्वारा हर भाई हर बहन सत्संगी होकर परम प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, इसमें लेस मात्र भी संदेह की बात नहीं है। अब रही आपकी मौज, क्या आप प्रेम प्राप्त करना चाहें अथवा न चाहें, आपकी मर्जी की बात है। मुक्ति चाहें तो उसके लिए ज्ञान मौजूद है, मुक्ति चाहें उसके लिए कर्म सामग्री मौजूद है, प्रेम की मांग हो तो उसके लिए भाव शक्ति आप में मौजूद है। हम भगवान को अपना मानने में पराधीन नहीं है, हम संसार की ममता कामना तोड़ने में पराधीन नहीं है, हम बल का सदुपयोग करने में पराधीन नहीं है। मेरे को यह था कि सत्संग के द्वारा स्वाधीनता पूर्वक हम सब साधन निष्ठ होकर प्रेम तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं, इसी सद्भावना के साथ मैं आपको प्रणाम करता हूँ।
तो सत्य को स्वीकार करने से क्रांति आती है, आंदोलन से क्रांति नहीं आती। इसलिए मानव सेवा संघ में क्रांति है, आंदोलन नहीं है। अरे भाई, हम मानव हैं, हमें मानव होने के नाते किसी का बुरा नहीं चाहना चाहिए।
हम कोई अपराध अगर करता है,
सुन लो, अपराध करता है तो तुम क्यों करता है? कोई सोचो, पहले आपने कहा कोई अपराध करता है तो तुम उसका हाथ पकड़ लो राष्ट्र के बन करके, लेकिन और जरा गंभीरता सोचो कि कर्ता क्यों है? कर्म से कर्ता बनता है कि कर्ता में से कर्म निकलता है?
कर्ता में से कर्म निकलता।
अच्छा, तो जब तक उसने अपने को बुरा नहीं बनाया तब तक वो बुराई कर सकेगा?
नहीं, पहले बुरा बना तब
बुराई करेगा। तो मैं वो बुरा न रहे ये करुणा जगह आपके हृदय में, और बुराई के बदले में यदि आप भलाई करें तो उसका सुधार होगा, कि बुराई के बदले में दंड देने से सुधार होगा? है वो राष्ट्र का काम, व्यक्ति का नहीं है वो, और ये व्यक्ति का काम है कि आपके साथ बुराई की कोई, मैं बदले में बुराई तो नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मानव हूं, मैं साधक हूं, मैं बुराई नहीं करूंगा। तो मानवता के द्वारा समाज में क्रांति आती है कि दंड विधान के द्वारा समाज में क्रांति आती है? यही मेरा मतलब। तो एक साधक धर्म होता है, एक राष्ट्र धर्म होता है। देखो, दंड विधान जो है वो व्यक्ति नहीं दे सकता, व्यक्ति कोई जैसे किसी को कोई कहे किसी ने फांसी का हुक्म किसी को हो जाए तो व्यक्ति फांसी के बदले फांसी नहीं दे सकता, राष्ट्र कानून देगा। ठीक, कि भाई तुमने आराया तुमको फांसी दी जाती है, क्या मजिस्ट्रेट फांसी देगा? कानून देगा। तो विधान के द्वारा, दंड का विधान जो है वो आप अपने द्वारा अपने साथ भी कर सकते हैं, अगर चाहें तो। अगर आप चाहें तो आप एक अदंडनीय समाज का निर्माण कर सकते हैं। कब? कि हम लोग गलती करने वाले स्वयं अपने साथ न्याय करें। न्याय के तीन अंग होते हैं। पहला अंग होता है हम इस बात को स्वीकार करें कि हमने बुराई की, ये। दूसरा अंग होता है उससे हमारे हृदय में वेदना होनी चाहिए, करे राम राम, हम मानव हो के हमने बुराई की। तीसरा निर्णय होता है अब मैं कभी नहीं करूंगा। तो इस दृष्टि से न्याय निर्दोषता की स्थापना होगी कि जो राजदंड से निर्दोषता की स्थापना होगी?
पहले वाले से होगी।
इसीलिए मेरा निवेदन था, आचरण चरण स्थूल चल गई, अब आगे बढ़ो, कि बुराई हम बुरे होकर करते हैं। इसलिए देखिए मानव शास्त्र ने बड़ी सुंदर बात बताई, उसने कहा कि देखो भाई तुम भले पहले हो जाओ, पहले भले हो जाओ, कैसे? की हुई भूल को न दोहराने का व्रत लेकर भले हो जाओ। अच्छा, तो अब यहाँ भले होने के लिए हमें भलाई करनी पड़ी कि बुराई छोड़नी पड़ी?
बुराई छोड़नी।
तो बुराई छोड़ना जो है ये भलाई का मूल है कि हमने थोड़ी बुराई भी की थोड़ी भलाई भी की, ये
बुराई छोड़ना है
मूल, बुराई छोड़ना मूल है। तो इस दृष्टि से मानव संस्कृति प्रणाली भी है कि भैया अपनी भूल क्या है। तो हमारी सबसे बड़ी भूल क्या है कि जो संसार की वस्तु है उसे हम अपना मान लेते हैं और जो अपनी वस्तु है उसे भूल जाते हैं। संसार की वस्तु क्या है? शरीर है, वस्तु है, योग्यता है, सामर्थ्य है, ये संसार की है। और अपना क्या है? परमात्मा अपना है। तो जो अपना है उसे भी हम भूल गए और जो संसार का है उसको अपना मानने लग गए। अब आप विचार करके देखो, अगर ये बात हमारे आपके जीवन में ठहर जाए कि शरीर संसार के लिए है अपने लिए नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप तय करोगे इसके द्वारा बुराई तो किसी के साथ नहीं करूंगा, यथाशक्ति आंशिक भलाई करूंगा। क्यों भैया? करोगे ना? तो अब कौन सी भूल से, ये कहां से आई अच्छाई? जब आपने सत्य को स्वीकार किया कि शरीर मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, प्रभु मेरे हैं और मेरे लिए हैं। तो प्रभु मेरे हैं और मेरे लिए हैं, इस बात को जब आप मानेंगे तो प्रेम जगेगा कि नहीं? ये? और शरीर मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, इस बात को आप मानेंगे तो सेवा बनेगी कि नहीं? अच्छा, सेवा के बदले में भी कुछ नहीं चाहिए और प्रेम के बदले में भी कुछ नहीं चाहिए तो त्याग आ जाएगा कि नहीं? ये? तो आपका स्वरूप क्या हुआ, मानव का स्वरूप क्या हुआ? सेवा, त्याग, प्रेम, ये मानव का स्वरूप हो गया। अब सेवा के लिए क्या किया? सत्य को स्वीकार किया। प्रेम के लिए क्या किया? सत्य को स्वीकार किया। त्याग के लिए क्या किया? सत्य को स्वीकार किया। जब तुम्हारी वस्तु से हम तुम्हारी सेवा कर रहे हैं तो हमें क्या हक है कि उसके बदले में कुछ चाहिए? और अपने को अपना प्रेम दे रहे हैं तो क्या हक है कि प्रेम से बढ़िया भी कोई चीज है जो चाहिए? तो देखो, अचाह होना भी जीवन का सत्य निकला, प्रेमी होना भी जीवन का सत्य निकला और उदार होना भी जीवन का सत्य निकला। तो उदार होना, अचाह होना, प्रेमी होना, ये क्या है? ये जीवन का सत्य है या नहीं?
जी।
तो इस दृष्टि से आप विचार करके देखो कि हर भाई हर बहन यदि वो अपनी भूल रहित होने की बात को पसंद कर ले, जैसे शरीर, वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य संसार के लिए है, संसार के लिए है, अपने लिए नहीं है, संसार की है, अपनी नहीं है, अब इस सत्य को मानने मात्र से निर्विकारता प्राप्त होती है और उदारता जागृत होती है। क्यों भैया? निर्विकारता और उदारता आती है कि नहीं?
करके देखो महाराज, कर लिए
करके देखो, जिस अंश में करके देखो उसे फौरन मालूम होगा, निर्विकारता और उदारता। अपनी नहीं है तो मोह सताएगा क्या? बोलो,
तब तो नहीं सताएगा।
अच्छा, लोभ सताएगा क्या?
नहीं सताना चाहिए।
अभिमान आएगा क्या? विषमता दिखेगी क्या?
नहीं।
अब तो समता आ गई, निर्लोभता आ गई, निर्मोहता आ गई, निर्भिमानता आ गई, तो ये निर्विकारता आ गई कि नहीं? बोलो। अब तो आप तो कैसे देखेंगे, देखो आ जाएगी जरूर। अच्छा, और अपना अपने को प्यारा नहीं लगेगा तो प्यारा लगने का उपाय कोई है? अगर किसी को हम अपना मानकर उसको प्यार नहीं दे सकते, अगर प्रभु को अपना मानकर हम प्यार नहीं दे सकते, तो किसी बल के द्वारा प्यार पैदा होता है क्या?
नहीं
जी, योग्यता से
किसी से नहीं।
अच्छा, मैं आप पूछ रहा हूँ कि परमात्मा को अपना मानने के सिवाय और क्या भजन होगा?
और कुछ
जी? लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जो शरीर हमको मिला था संसार की सेवा के लिए, यानी संसार भगवत नाते संसार की सेवा करने के लिए बनाना था, उसको हमने अपने काम में लगा लिया कि मैं 1,00,000 नाम लूंगा, उसका फल मुझे मिलेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप नाम लेना कोई बुरी बात है, कि नाम नहीं लेना चाहिए। मानव शासन की प्रणाली में बताया जाता है कि भगवान का नाम अपने का हर चीज अपने को प्यारी लगती है, तो भगवान का नाम भी हमको प्यारा लगना चाहिए। अब आप विचार कर देखो, नाम का प्यारा लगना लाभदायक है कि नाम का उच्चारण करना लाभदायक है?
नाम का प्यारा लगना।
अच्छा, तो प्यारे का नाम होगा तब प्यारा लगेगा कि बिना किसी गैर का नाम प्यारा लगेगा?
प्यारे का नाम प्यारा लगेगा।
अच्छा, और प्यारे की सृष्टि प्यारी लगेगी कि अपनी लगेगी?
बहुत प्रिय
लगे, यानी प्यारे की हर चीज प्यारी लगती है। तो भगवान को अपना मानेंगे तब भजन होगा कि किसी क्रिया विशेष से भजन होगा?
अपना मानेंगे।
अपना मानेंगे तो भजन होगा। क्यों? ऐसा सुना है गुरु वाणी से, भक्त वाणी से, वेद वाणी से, कि जो सदैव रहता है उसी को परमात्मा कहते हैं, जो सभी का होता है उसी को परमात्मा कहते हैं, जो सर्वत्र होता है उसी को परमात्मा कहते हैं, जो समर्थ है उसी को परमात्मा कहते हैं, जो अद्वितीय है उसी को परमात्मा कहते हैं। परमात्मा एक ही है ना
जी?
तो इस हिसाब से सोचिए कि जो चीज सभी को, उसको हम और आप अपना मान सकते हैं कि नहीं? जी
मान सकते
हैं। अच्छा, जो सदैव है उसका कभी नाश होगा जी?
नहीं।
तो सभी का होने से अपना, और सदैव होने से अभी, और सर्वत्र होने से अपने में, तो परमात्मा का भजन कब होगा? जब तुम ही मानोगे कि अपना है, अपने में है, अभी है, समर्थ है, अद्वितीय है। ये 5 बातें मान लेने के बाद ही भजन होगा कि पहले भजन हो जाएगा?
बोलो। इसके बाद ही
है?
इसके बाद
ही भजन होगा। अब इन 5 बातों को मान करके कि परमात्मा अपना हुआ, अपने में हुआ, अभी है, समर्थ है और अद्वितीय है, तो अद्वितीय होने से तो हमको पहचान नहीं करनी पड़ेगी कि 2 तो है नहीं, एक ही है, और समर्थ होने से हमारे के अंदर भय नहीं रहेगा, और अपने में होने से अप्राप्त नहीं रहेगा, और अपना होने से प्रिय रहेगा। क्या राय
जी?
बहुत बढ़िया बात।
अब विचार कर देखिए, अपना होने से तो हमको प्यारा लगेगा, अपने में होने से अप्राप्त नहीं होगा, प्राप्त रहेगा, अभी होने से भविष्य की आशा नहीं करनी पड़ेगी, समर्थ होने से हम अभय होंगे, और एक होने से ज्ञान पहचान की जरूरत नहीं पड़ेगी, जांच कैसे नहीं करनी पड़ेगी, कैसा है क्या है। एक बार की बात है कि मथुरा में बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था, लाखों आदमी की भीड़ बताते थे लोग, कोई गिनने तो सो जाने, तो वहां हमको भी बुला लिया था। इतफाक की बात है ना, हमको यज्ञ के जाने लायक तो थे नहीं, तो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, और वो यज्ञ ऐसा था कि पंडित श्री राम जी ने किया था, वो थे पुराने आर्य समाजी, तो आर्य समाज के लोग भी उसमें आए थे, और सनातनी ढंग के भी लोग आए थे, दोनों तरह के आए। तो एक महात्मा बड़े ऊंचे वेदों के पंडित परमात्मा की महिमा का वर्णन कर रहे थे, परमात्मा के स्वरूप का, ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं, उसके बाद हमको बोलना पड़ा। अब 20 मिनट मिलता था, बड़ी मीटिंग थी ना, एक आदमी 20 मिनट का समय। तो हमने कहा कि परमात्मा ऐसे हैं ऐसे हैं, ये तो हम तब सोचें जब उन्हें छोड़ सकें। जो छोड़ा नहीं जा सकता वो कैसा है, प्रश्न आता है क्या? तो परमात्मा ऐसा, परमात्मा का वर्णन अविष्ट है कि परमात्मा को अपना मानना अविष्ट है?
अपना मानना
एक ही है, सदैव है। तो मौजूद को, मौजूद का चिंतन करें कि मौजूद को प्यार करें? बोलो। अब परमात्मा के मानने वाले जरा सोचो कि तुम क्या करते हो। मानते तो ये हो कि परमात्मा मौजूद है, तो मौजूद को तो प्यार किया जाता है, मौजूद का बुलाया जाता है मुंह से, मन से, वाणी से, बुद्धि से। बोलो पापा।
नहीं,
मौजूद चीज को बुलाओगे, ढूंढोगे क्या?
नहीं, प्यार से,
प्यार करोगे। तो परमात्मा प्यारा लगना चाहिए, परमात्मा को अपना मानना चाहिए, परमात्मा को के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए, मौजूद है। देखिए, परमात्मा हमको क्यों नहीं मिलता, हम परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करते कि मौजूद है। इतना सुन लेते हैं परमात्मा है परमात्मा, लेकिन उसके अस्तित्व कहाँ स्वीकार करते हैं, उसके महत्व को कहाँ स्वीकार करते हैं, उसके अपनत्व को कहाँ स्वीकार करते हैं? अगर हमने प्रभु के अस्तित्व को, महत्व को, अपनत्व को स्वीकार किया होता तो परमात्मा हमको प्यारा लगता, परमात्मा हमको अप्राप्त न होता, सो हम करते नहीं। अच्छा, अब रहा शरीर जो कि संसार की वस्तु है। संसार भले ही परमात्मा का हो, ये तो हो सकता है जी, और लेकिन शरीर संसार के बाहर जा सकता है?
नहीं।
तो शरीर के द्वारा हमें परमात्मा के जगत की सेवा करनी चाहिए थी, और अपने द्वारा हमें परमात्मा को अपना मानना चाहिए था। अगर हम अपने द्वारा परमात्मा को अपना मान लें, शरीर के द्वारा परमात्मा के जगत की सेवा करें, तो आप जानते हैं क्या परिणाम निकलेगा। अगर कोई आपकी किसी आपके परिवार के अगर कोई सेवा करता है तो आपको प्यारा लगता है कि अपनी लगता है?
प्यारा।
अच्छा, तो जब हम परमात्मा के नाते परमात्मा के जगत की सेवा करेंगे तो हम परमात्मा को प्यारे लगेंगे कि नहीं? और परमात्मा को अपना मानेंगे तो वो हमको प्यारे लगेंगे कि नहीं? तो हम परमात्मा को प्यारे लगें, परमात्मा हमें प्यारे लगें, हमारे परमात्मा के बीच प्रेम का आदान प्रदान है, ये तो हमारा संबंध था। लेकिन वाह रे, हमने कहा नहीं साहब, हम तो अकड़ के मौन बैठ जाएंगे एकांत में शरीर को लेकर। क्यों? परमात्मा मिलने के लिए। तो मौन से परमात्मा मिलेगा तो ये पत्थर के टुकड़े को पहले मिलेगा कि तुम्हें पहले मिलेगा? तुम उतना मौन तो हो नहीं सकते। उन्हें हम तो खूब गर्मी सहेंगे, धूप सहेंगे, तो वृक्षों को परमात्मा मिलेगा या तुमको मिलेगा? तो हमसे सबसे बड़ी भूल ये हो गई कि हमें परमात्मा की प्राप्ति का उपाय मालूम तो है और कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं। ये नहीं मानेंगे कि भैया ये सृष्टि एक इकाई है, इस इकाई का कोई एक मालिक है। तो अगर कोई कहे साहब हम ही सृष्टि के मालिक हैं तो कोई आपत्ति नहीं थी, हमें क्या आपत्ति, हो जाओ भैया तुम। लेकिन तुम में साहस है कि कोई कह दे हम सृष्टि के मालिक हैं? यानी दुनिया का बड़े से बड़ा वैज्ञानिक ये कह सकता है क्या कि हमने सूर्य बना दिया? सूर्य का उपयोग किया, वायु का उपयोग किया, आकाश का उपयोग किया, पृथ्वी का उपयोग किया, जल का उपयोग किया, जल को बनाया जी, तो सृष्टि किसी व्यक्ति की बनाई हुई है क्या?
नहीं।
ये मानना पड़ेगा ना। अगर हमने इस सत्य को मान लिया कि सृष्टि का रचयिता कोई मनुष्य नहीं हो सकता, व्यक्ति नहीं हो सकता, अथवा यूं कहो मैं नहीं हो सकता, क्यों भाई? नहीं सर। तुम सृष्टि के बनाने वाले हो सकते हो क्या?
नहीं,
नहीं हो सकते।
गेहूं से काटा नहीं कर सकते।
अच्छा, पूरी बना लोगे गेहूं मिल जाए तो मनुष्य ने सृष्टि का उपयोग किया, उत्पन्न किया, उपयोग किया, तो सृष्टि का उपयोग करना कहलाता है भोग, और सृष्टि के काम आना कहलाता है योग। ये योग की परिभाषा गौर कीजिए, सृष्टि का अपने लिए उपयोग करना भोग, और सृष्टि के उपयोग में शरीर को लगा देना योग। परमात्मा को अपना मानना योग और परमात्मा से कुछ मांगना भोग। अगर ये बात समझ में आ जाए, जच जाए, बैठ जाए, तो अनुभव करके देखिए कि परमात्मा को भाई अपना मानना है, उसे कुछ चाहिए नहीं, सृष्टि के काम आना है, सृष्टि की दी हुई वस्तु के द्वारा, सृष्टि की मिली हुई वस्तु के द्वारा सृष्टि के लिए उपयोगी होना है, उसका भोग नहीं करना है, परमात्मा से कुछ मांगना नहीं है। अगर ये दो बातें हम और आप मान लेते हैं तो जीवन में क्रांति आएगी कि नहीं आएगी? क्या राय?
आएगी।
इसलिए मानव शासन कहता है भैया तुम सत्संग करो, सत्संग तुम्हारा सुधर्म है। सत्य क्या है? संसार की वस्तु के द्वारा संसार के काम आना और परमात्मा को अपना मानना, न काम आने के बदले में कुछ चाहना, न अपने से कुछ चाहना, अचाह होना, तीन बात में सारे जीवन की समस्याएं होती हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्रभु अपने हैं, सब कुछ प्रभु का है, ये जीवन का सत्य है। इसको स्वीकार करने से उदारता, स्वाधीनता और प्रेम प्राप्त होगा। उदारता से जीवन जगत के लिए, स्वाधीनता से अपने लिए और प्रेम से प्रभु के लिए उपयोगी होगा। ये मानव का सुंदरतम चित्र है।